亏了，国债给六年了。 क्या क्या घटनाएं घटी, ऐसी घटनाओं की तरफ ध्यान दो जो मेरे द्वारा नहीं चाहने पर भी हुई है, घर की, परिवार की, बिजनेस की, रिश्तेदारों की, जान पहचान वालों की, परिचितों की, किसी की भी ऐसी ऐसी घटनाएं, मौसम, कानून व्यवस्था, सिस्टम, जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है ये सब काम मेरे अनुसार नहीं हुए, पूरी लाइफ में हजारों बातें ऐसे चलचित्र की तरह दिखाई देगी, मैं क्या चाहता था और क्या हुआ, मैं क्या चाहता था और क्या नहीं कर पाया, तो आपको लगेगा कि यार ये कुछ कुछ तो बात है, और एक बात समझ में आएगी कि ये सब करने वाला कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, तो कौन है, ये सबके अपने अपने कर्म, सबके अपने अपने कर्म है। कर्म तीन तरह के रहे, इनकी भी चर्चा हुई आप लोगों के बीच में, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म और एक नौ कर्म। द्रव्य कर्म देखते ही नहीं है, क्या करो, इसलिए विश्वास करना जरूरी है। इस द्रव्य कर्म की चर्चा जिनाधम ने इसलिए की है क्योंकि इसको विश्वास नहीं होता है, तो विश्वास कर एक बार, इस द्रव्य कर्म पे विश्वास कैसे करें कि नौ कर्म दिखते हैं ना, इनसे द्रव्य कर्म पे विश्वास होता है, कैसे करें विश्वास, ये विश्वास कैसे हो, हम चाहते तो बहुत है लेकिन विश्वास नहीं कर पाते, द्रव्य कर्म पे विश्वास कैसे करें, जो चीज दिखती नहीं है आखिर उस चीज पर विश्वास कैसे करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं महेंद्र भाई हमें आत्मा पर विश्वास नहीं है कि आत्मा है, हमें दिखाओ तो हम मान लें, जो इनविजिबल चीज है उस पर विश्वास करना कितना कठिन काम है, ये द्रव्य कर्म दिखते नहीं, करो विश्वास इनके ऊपर, आसान नहीं कठिन लगती है बात, विश्वास नहीं होता हमारे को इन द्रव्य कर्मों के ऊपर, लेकिन कहते हैं तो ये नौ कर्म तो दिखते हैं ना, द्रव्य कर्म तो नहीं दिखते, ये नौ कर्म दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्यों तुझे ऐसे मिले हैं, इस पर विचार कर तो तुझे द्रव्य कर्म ख्याल में आएंगे कि हाँ द्रव्य कर्म होने चाहिए, उनमें कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो हमारे किए हुए का फल देती है, यदि भगवान नहीं देती आप भगवान को देने वाला मानो, और भगवान को यदि आप नहीं मानते हो फल देने वाला, तो फिर कोई ऐसा मानना पड़ेगा जो कोई ना कोई हो, वो कौन है जो फल देता है, बस शास्त्र में उसको द्रव्य कर्म कहा है, आप उसको कोई शक्ति दे दो, अदृश्य शक्ति है कोई, कभी ऐसी घटनाएं कितनी होती है हमारी लाइफ में, कुछ भी नहीं था, डॉक्टर को दिखाया और एकदम कैंसर बता दिया, ऐसी रोज होती है ना लोगों के जीवन में, ये तो बहुत होती है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीन साल से कैंसर बताया हुआ था और आज डॉक्टर को दिखाने के लिए जांच कराई और वो सब बिल्कुल कैंसर नहीं है, ये क्या हुआ, ऐसी घटनाएं घट जाती, जब इस तरह की कुछ चमत्कारिक घटनाएं घटती है तो आपके दिलो दिमाग में ये बात आती है कि यार ये मेडिकल कैसे हो गया, ये हुआ कैसे, आखिर कोई ना कोई शक्ति तो काम कर रही है, इस यूनिवर्स में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई ऐसी पावर है जिसे हम महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पावर से ये काम हुआ है, ये बात कहीं ना कहीं ख्याल में आएगी, ये उन लोगों को भी ख्याल में आती है जो लोग जैन नहीं है, तो लोग कहते हैं भाई साहब भगवान को तो मैं नहीं मानता लेकिन कोई तो है ऐसा जिसने ये काम किया, कैसे हुआ, तीन साल से प्रॉब्लम चल रही थी और अचानक और नामो निशान नहीं बचा उस कैंसर का, और इलाज करवाया नहीं मैंने, और हम तो हिम्मत हार चुके थे, हम तो ये सोच चुके थे कि अब तो जीवन नहीं बचेगा, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और अब जिंदगी ऐसी चल रही है पिछले पांच साल हो गए, कैसे हुआ आखिर ये चमत्कार, कोई शक्ति काम कर रही है, तो जब इस तरह की बातें देखते हैं तो हमें विश्वास होता है कि कर्म है कोई, फिर जब जैन दर्शन में, जैन शास्त्र में, जैन आगमों में हम उस कर्म के बारे में पढ़ते हैं, हमें भरोसा हो जाता है यह बात बिल्कुल सच्ची है, ये कर्म है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। रही बात है तीसरे प्रकार के कर्म की, जिसका नाम भाव कर्म कहा, उस पर विश्वास होना इसलिए भी आसान है
क्योंकि ये बात हमारे को सब समझ में आई है कि जब भगवान को करता नहीं है और द्रव्य धर्म से सारे काम होते हुए दिखे हैं तो ये द्रव्य धर्म आखिर आया कहाँ से है, ये द्रव्य धर्म आता कहाँ से है, ये द्रव्य धर्म मिला कहाँ से है, बोलो। तो फिर समझ में आएगा कि कोई ना कोई और होना चाहिए जो द्रव्य धर्म के पीछे काम कर रहा है। ये द्रव्य कर्म के पीछे कौन काम कर रहा है? आखिर द्रव्य कर्म ने मेरे पास ही ऐसा क्यों किया? ये द्रव्य कर्म ने इनके पास ऐसा क्यों नहीं किया? इसका मतलब द्रव्य कर्म सबका अपना अपना है। इसका मतलब द्रव्य कर्म कोई ऐसा नहीं है कि चाहे जिसको चाहे वे कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं है। कोई भूत यहाँ प्रकट हो गया, उसके मन में आई कि हरीश भाई को परेशान, गिरीश भाई को परेशान करो, तो इनको कर दिया। उसके मन में आई कि संजीव जी को परेशान करो, उन्होंने इनको कर दिया। ऐसा कोई भूत है कोई बैठा हुआ द्रव्य कर्म? नहीं भाई, वो द्रव्य कर्म कोई भूत नहीं है। आखिर मुझे ही क्यों किया? इसके पीछे कुछ तो कारण होना चाहिए मुकुंद भाई, कुछ तो कारण होना चाहिए। आखिर मेरे को ही द्रव्य कर्मों ने परेशान क्यों किया? तो फिर समझ में आता है भैया, ये द्रव्य कर्म कहीं से चिपकते नहीं है, ये द्रव्य कर्म अपने आप आते नहीं है, ये द्रव्य कर्मों के पीछे भी कोई हेतु है जो काम कर रहा है। वो क्या है? उसका नाम है भाव कर्म। समझ में आ रही है बात? शक्ति अप्रश्न ये है कि वो भाव कर्म कहाँ से आया? अरे भाव कर्म तो हम कर रहे हैं, कहाँ से आया? बस क्या भगवान है जो हम कर रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब दर्ज किया जा रहा है। जितना जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब का सब रिटर्न में लिखा जा रहा है। अरे भाई, लिखा जा रहा है वो सब, ये कौन लिख रहा है? ऊपर बैठा कोई चित्रगुप्त लिख रहा होगा। चित्रगुप्त की कल्पना है हिंदू दर्शन में, हिंदू मान्यता में मरने के बाद में ऊपर चले जाते हैं, दरवाजे पर पहुंचने के बाद में वहां सबको लाइन में लगाया जाता है। बहुत बार एक बार मर जाए ना तो थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाता है उसके पास में, फिर एक एक को लाइन से बुलाया जाता है, चलो भाई, और फिर उसको उसका पूरा का पूरा सुनाया जाता है कितना कि जो तूने जीवन भर किया था, देख तूने ये किया था, ये सब तूने किया था, और जब अब इन सबका ये निर्णय और ये फैसला सुनाया जाता है तो ये नरक भेजा जाएगा, ये चेंज भेजा जाएगा। मेरे बाद में ऐसा होगा, हमारे यहाँ जैन परंपरा में ऐसा कोई चित्रगुप्त नहीं है। हमारे द्वारा किए गए भाव है और उनका फल भी हमें ही मिलता है। तीन हो गए, द्रव्य कर्म दिखाई नहीं दे रहे लेकिन शक्ति है, पावरफुल है वो। द्रव्य कर्मों की शक्ति को कम मत समझना, ये धूल तो है भाई। कल हमने इसको धूल कहकर ये पुकारा था, ये आत्मा के साथ बंधने वाले धूल के समान कण निमित्त की अपेक्षा से स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते। बोलिए, नौकर नहीं दिख रहा है, ठीक है। कारण हमें तीन कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर। तो द्रव्य कर्म खुद तो नहीं दिखा, लेकिन उसका फल जो नौकर दिखा ना, उससे पता लगा कि द्रव्य कर्म था, ठीक है ना। ये समझाया हमने, ये चर्चा कर रहे थे, ये जो द्रव्य कर्म है, ये द्रव्य कर्म को देखने से द्रव्य कर्म नहीं दिखेगा, लेकिन नौकर्म आगे जो दिखा है उसको देखने से पता लगता है कि कोई न कोई द्रव्य कर्म होना चाहिए। तो क्या करेंगे अभी तक? ये धूल के समान कण है, धूल जैसे है, द्रव्य धूल है। अरे यार, धूल से क्या डरना? डस्ट से एलर्जी, हमारी वाइफ को तो डस्ट से एलर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता धूल से, धूल धूल से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन ले, ये जो धूल है ना, ये वैसी धूल नहीं है जिससे फर्क नहीं पड़ता। ये है तो धूल, लेकिन ये धूल जब अपना असर दिखाती है ना, तो अच्छे अच्छे बलवान व्यक्ति बलहीन हो जाते हैं, अच्छे अच्छे का पावर निकल जाता है। ये धूल ऐसी है, किताब ये धूल आती कहाँ से है, ये धूल मिलती कहाँ है? कहीं मार्केट में मिलती हो तो खरीद लाओ, جس کو آپ دھول کہہ رہے ہو یہ دھول ملتی کہاں ہے؟ یہ ڈسٹ کہاں سے آتی ہے؟ روڈ سے؟ یہ ڈسٹ کون سی کنٹری میں اڑتی ہے؟ وہاں تو میں گیا ہی نہیں، یہ ڈسٹ کہاں ملے گی؟ بولے یہ ہے اس کے پیچھے کے بھاؤ کر، یہ بھاؤ کرم کو کارن کہہ دیا ہم نے، اور انت میں کہہ دیا بھاؤ کرم کی چرچا کرتے ہوئے، کل جو ہم نے چرچا کی تھی اس میں سبھی طرح کے، سبھی طرح کے، اب سب نے آپ کتنا لگا سکتے ہو یہ آپ کے اوپر جوڑا، سبھی طرح کے بھاؤں کو ہم نے کہہ دیا یہ بھاؤ کرنے کرنے ان سے ڈرنے کروائیں گے۔ ارے جس بھاؤ سے ستنگر کرم پرکرتی بنتی ہے وہ بھی بھاؤ کرنے، 148 کرم پرکرتیوں کے بندھن میں کہتے تھے بندھن یوگی 120 ہی ہے، 148 کبھی بنتی نہیں ہے، بندھن یوگی کرم پرکرتیاں 120 ہے، ٹھیک ہے نا، 120 کرم پرکرتیاں، ان کرم پرکرتیوں کے بندھن کے لیے جتنے بھی بھاؤ ہوتے ہیں، یا سنو سوتے اٹھتے کھاتے پیتے نہاتے دھوتے ندرا کے کال میں بھی، یہاں تک کہ بےہوشی کے کال میں بھی بھاؤ چلتے ہیں، وہاں بھی درد کرم کا بندھن نرنتر چالو ہے، ہوتا ہے وشواس آپ کو بےہوشی کے کال میں کیسے ہوتا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بہت لوگوں کو کوما میں دیکھا ہوگا، کوما کے کال میں کیا چلتا ہے؟ اس کو کچھ چلتا ہے؟ کوما میں کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، بےہوش پڑا ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، ایسا پڑا ہے بالکل بے چیز پڑا ہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے، کیوں کچھ کر رہا ہے کہ نہیں، کچھ کرم بن رہے ہیں کہ نہیں؟ نان اسٹاپ بن رہے ہیں سر، نان اسٹاپ بن رہے ہیں 24/7، جو کل بات کہی تھی 24 گھنٹے سالوں دن، 365 دن کبھی چھٹی نہیں ہے ان کرموں کو بندھن سے، کیوں ان کرموں کو چھٹی نہیں ہے؟ چھٹی مل سکتی ہے دنیش بھائی؟ کون دے؟ ہم چھٹی دے رہے تو چھٹی مل جائے گی کیا ہمارے ہاتھ میں؟ ہم چھٹی نہیں دیتے اس لیے کرموں کو چھٹی نہیں ملتی، یہ بندھن کا کام چالو ہے، سب طرح کے بھاؤ آگے سارے پاپ، دیکھو یہ ویکتی کیا کہتا ہے جب کرم بندھن کی چرچا چلتی ہے، مکل بھائی یہ کیا بولتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کبھی کبھی کرم بنتے ہوں گے، کبھی کبھی جب کوئی کسی کی نندا آلوچنا کر رہا ہو آپ کے پاس میں بیٹھا بیٹھا، کسی کی برائی بھلائی چرچا کر رہا ہو، آپ کہتے یار بیٹھے کھالے کھائے تو کرم باندھتے ہو یار، اپن کیوں کرم باندھے، اپنے کو کرم نہیں باندھنا چاہیے، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ جو پرٹیکولر پوزیشن تھی نا اسی پوزیشن میں کرم بندھے، اور اجے کے بارے میں بھی اس کو ایسا لگتا ہے جب کوئی وشیش جاتی کی پرستھتی ہمارے پاس میں بنتی ہے تبھی اس کو لگتا ہے کہ یار یہ میرے کیسے کرم کا ہوئے آیا، ابھی کوئی کرم کا ہوئے چل رہا ہے، آپ ہی کر رہے بندھن تو چالو ہے، ارے بھائی بندھن تو چل رہا ہے لیکن اجے بھی چل رہا ہے نا، کتاب یہاں بیٹھے بیٹھے تو میرے کو کوئی نوکر ملا نہیں، ابھی کیسا کرم کا ہوئے چل رہا ہے، جب کوئی چیز ملے گی درد کرم کے پھل میں نوکر ملتے ہیں، جب میرے کو کوئی چیز ملے گی تو پھل مانوں گا میں، مجھے کچھ مل تو رہا نہیں کیسے مانوں؟ یہ سنو نیا نیا ملے یہ ضروری نہیں ہے، پرانا مینٹین رکھنے والا بھی درد کرم ہوتا ہے، کیا آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ جو باڈی مینٹین ہے یہ نوکر ہے، درد کرم کا ادے چل رہا ہے ابھی بھی، آیو کرم کا ادے چل رہا ہے، نام کرم کا، آٹھوں کرموں کا ادے چل رہا ہے، کل بندھن کی بات کی تھی، بندھن سات کرموں کا 24/7 اور ادے آٹھ کرم کا 24/7، بندھن سات کا اور ادے آٹھ کا، ابھی کون سا ادے چل رہا ہے دنیش بھائی؟ ابھی کون سا ادے چل رہا ہے آپ کے؟ ابھی تو کوئی نہیں چل رہا ہے، ابھی تو کوئی ادے نہیں چل رہا ہے، شبھ ادے چل رہا ہے، شو کی سن رہے ہیں، اور کوئی اس کے علاوہ हम तो ये कह रहे हैं आठों का चल रहा है सब, आयु भी चल रही, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय भी चल रहा है। ये जो सुंदर शरीर जैसा भी सुंदर मसूरत जैसा भी जो बना हुआ है, ये जो शरीर है, इस शरीर के मेंटेन जो भी हो रहा है नामकरण काम कर रहा है अपना। जिस कुल में हम वर्तमान में है ये गोत्र नामकरण काम कर रहा है, गोत्र कर्म काम कर रहा है उसमें। जो संयोग अभी हमारे बाद में है और जिन संयोगों में अपनापन आदि बाध्यता है, घर बार है मकान वेदनीय कर्म है, तन पर जो कमरे है वेदनीय कर्म का उदय है, जो वर्तमान में ऐसे मिले हुए अभी उदय चल रहा है इनका। जो सुन रहे हैं ये साधा का उदय चल रहा है, तीव्र पुण्य के योग से मिलती है जन्माने पुण्य का अवसर, गुरु का सानिध्य मिले हैं ये बड़े भाग्य से होता है। हम गुरु हैं ये नहीं कह रहे, ये भीतरागी जो गुरु मिल रहे हैं ना हमारे को, ये समझाने वाले जो गुरु मिल रहे हैं हमारे को, जिन संतों की बात हमारे को मिलती है, जिन आत्मा की साधक जीवों की वाणी का लाभ हमारे को मिल गया है, ये सब गुरु महाभाग्य से मिलते हैं। उनकी वाणी का योग बनना ये भाग्यशालियों का, ये दिखाता है कि सब अभ्युदय हो गया है। और समझो जिस व्यक्ति कल को एक प्रवचन का हवाला किया था मैंने आपको, यूट्यूब के एक प्रवचन का, भाग्यशाली कौन सुना किसी ने, सदभाग्य किसे कहे तो सुनना। मैंने यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बात बनी कि हम प्रवचन सुनने नहीं जा पा रहे हैं, यदि कदाचित हमारे जीवन में हमने कुछ ऐसी बात सुनी क्या महेंद्र भाई, या कुछ ऐसी घटना घट गई कि हम इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, सत्संग में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझ लेना दुर्भाग्य उदय आना शुरू हो गया। अभाग्य फलित होता हुआ शुरू हो गया। ये आयोजन, इस आयोजन में मूल प्रयोजन को बताने वाले मिल जावे और मूल गुरुओं की बात हमारे को मिल जावे, संतों की बात, लेखनकरों की बात जो परंपरा से चली आई हुई है, जो विद्वानों और ज्ञानियों के माध्यम से, अनुभवी ज्ञानियों के माध्यम से जो बात हम तक पहुंच गई है, ये कुछ अपूर्व बात है, इसको साधारण मत समझना। ये जो हमारे को मिल गई है इसमें भी कोई ना कोई उदय काम कर रहा है। मैं कहता हूँ कभी कभी न मालूम कितने जन्मों का पुण्य संचित हुआ होगा, तब जाके हमारे को ये बात पल्ले पड़ी है, सुनने को मिली है, ये अवसर मिला है, नहीं होता है। आप समझाते हो महेंद्र भाई, कितनों को समझाते रहो आप, यार सुनो, आओ सुनो, सुनने के लिए आओ, लेकिन आप क्या करोगे यार, उनके भाग्य में नहीं, खोटी गति बन गई है, नए रिवॉर्ड में जाना लगती है, हम किसी के बारे में आपकी अपना नहीं कहना चाहते, क्या करें, लेकिन वो नार भली नहीं है, भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। इनको तब समझ में आएगी जब कोई झटका लगेगा, और फिर आप ही थोड़ी बहुत समझ गए, फिर कोई कोई आपको कहते भी होंगे महेंद्र भाई आप सच कहते थे, हमने उस समय आपकी सुनी नहीं, हमने इतने काम निकाल लिए, क्या है ये सब, मुझे ये सब चल रहा है ऐसा वर्तमान में रमेश भाई, अभी चल रहा है ये सब, ज्ञानवर्णीकरण का उदय योजन चल रहा है, इसलिए बातें कुछ समझ में आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रही है। दर्शनवर्णीकरण का उदय चल रहा है वर्तमान में, कोई तीव्र आता है कभी कभी तो झोंका आ जाता है, निद्रा दर्शनवर्णी है, करेंगे चर्चा, अभी समझाऊंगा एक एक कर्म की चर्चा करूंगा, अलग अलग बात करूंगा मैं इन सब की, कौन से कर्म से क्या क्या दिखाई देती है। दर्शनवर्णी मोहनी कर्म श्रद्धा की विपरीतता बरकरार है वर्तमान में, दर्शन मोहनी काम करता है उसका उदय खतरनाक है, चारित्र मोहनी का मंद उदय वर्तमान में दिखाई दे रहा है, इसलिए कचारे रूप प्रवर्तन नहीं दिखाई देता है, लेकिन मंद उदय बराबर चल रहा है, चारों हुए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय वेदनीय, ये सब तन पर कपड़े, हाथ की घड़ी, संयोग मोबाइल चश्मा सब यहाँ से दिख रहे हैं, कौन सी कुर्सी पर बैठे हैं, ये तो वेदनीय का काम है, बेटा तो होने वाली कुर्सी थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं लग रही, बेटा तेरा ही वेदनीय है, थोड़ी सी बदलो ना कुर्सी है, थोड़ा सा लोगों को बैठे, मैंने कई महीने वाले थे तो मेरे को कहा अच्छा किया आपने बता दिया, आप तो हर चीज नहीं बदलूंगा, ज्यादा आरामदायक होगी तो बैठिए बोलेंगे। बोलो ये जो मिला है आपको जैसा फील हो रहा है कि वेदनीय है, अभी आएगी क्या क्या वेदनीकरण के बंधन के कारणों की भी चर्चा करूंगा। आयु नाम गोत्र सब फल दिखाई दे रहे हैं, शुभ आयु परिणाम उससे बने थे द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्मों से मिले थे ये सारे नौकर, इससे इनका जो आपको दिखाई देते हैं। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें जो कुछ भी कहें, ये सब उदय का काम है, ड्यूटी मन की वृत्ति है। सुखावास दिखाई देता है, दुखावास दिखाई देता है, ये लगता है मैं बहुत खुशी हूँ, मैं बहुत आनंदमय हूँ, ये थोड़ा पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा पाप का उदय आ जाए कहीं ये भी बने रहे। मानिक बिंदु का उल्लेख करूंगा मैं आगे चल करके, थोड़ा सा महेंद्र भाई हिंट देना, याद रखना कि ये जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग जो आते हैं ये वेदनीय कर्म से आते हैं क्या, बस इतना सा आप बता देना। मैं इस बिंदु को थोड़ा सा और विशेष खोलूंगा, सही आगे चर्चा कुछ वाक्य कहता हूँ कल रहे ना रहे। ये जो संयोग आते और जाते हैं ना, ये किसी कर्म से नहीं आते जाते, क्या कह रहा हूँ मार्मिक बात कह रहा हूँ, विशेष स्वाध्यायी लोगों के लिए ये जो कर्म है ये जो संयोग दिख रहे हैं, इन संयोगों का आना और इन संयोगों का जाना किसी कर्म के उदय से नहीं होता। ये बीच में पॉइंट दे दिया है मैंने, चर्चा तो अभी वही करूंगा कि संयोग इसी से मिल रहे हैं, चर्चा तो वही करूंगा, फिर भी एक नया पॉइंट कह रहा हूँ, अलग अच्छी बात कह रहा हूँ, विशेष गहरे स्वाध्यायियों के लिए। रणेश भाई क्या मतलब? मतलब ये है दिनेश भाई, तो बात ध्यान देना थोड़ा पॉइंट क्या कह रहे हैं। मैंने ये जो कर्म है ना, ये कर्म तो है कारमान वर्गना, और ये जो संयोग है ना, ये सब संयोग है आहार वर्गना, और कारमान वर्गना आहार वर्गनाओं की कर्ता धर्ता नहीं होती, इसलिए पुण्य का उदय अनुकूल संयोगों को खींच के ले आए और पाप का उदय प्रतिकूल संयोगों को खींच करके ले आए, ऐसा नहीं होता। ये सारे संयोग अपनी क्रियावर्ती शक्ति से यत्र तत्र विचरण करते हैं, तो फिर क्या होगा पुण्य पाप का? ये सुनो, ये जो कुर्सी है ना, ये जो कुर्सी अभी जिस पर मैं बैठा हूँ, ये मेरा पुण्य का उदय इसको नहीं लाया, मेरा पाप का उदय इसको नहीं लाया, ये कुर्सी तो अपनी योग्यता से यहाँ है। जब मेरा पुण्य का उदय होता है तब मुझे लगता है यार कितनी आरामदायक है, और ये मेरी पाप का उदय चालू हो जाता है, ये संयोग जो का जो बना हुआ है मेरी फीलिंग चेंज हो जाती है, यार ये बहुत कष्ट दे रही है। सच्चाई क्या है? ये कुर्सी किसके उदय से आई मैं आपको पूछ रहा हूँ, चलो गहराई से विचार करना, यहाँ सेंटर में कितनी कुर्सियां लगी हुई है, ये किसके उदय से आई है? जब जो व्यक्ति आकर के बैठेगा और जैसा लीन करेगा तदनुसार उसका उदय चल रहा है ऐसा कहा जाएगा। संयोग तो सही हो गए, संयोग तो सही हो गए, मैंने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता, कारमान वर्गनाएं आहार वर्गनाओं की कर्ता धर्ता नहीं होती, सहज ऐसा निमित्त में जो संबंध देखा जाता है, जिस वजह से ये बात ख्याल में आती है। चलो ये बात मैंने बीच में गई, मार्मिक बात थी, थोड़ा और खुलासा करेंगे जब अवसर मिलेगा, याद दिलाना कल करेंगे चर्चा, कल के अंतिम प्रवचन में कर सकते हैं, है ना? अभी तीन चार प्रवचन है, चार प्रवचन बीच में, कल के शाम के अंतिम प्रवचन में करेंगे। तो ये क्या देख लिया हमने, अनुकूल और प्रतिकूल संयोग मिले कैसे भाई सब, कैसे मिले? अपने कर्म का उदय, सीधी सी बात है, ये कर्म कौन से हैं जरा उन कर्मों को देख ले एक बार। द्रव्य कर्म के वेद कर लेते कर्मों के कर्म पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उनसे कुछ रिलेशन एक एक के नौ कर्मों के बारे में भी बताऊंगा, है ना, और करूंगा चर्चा। नाम दो है प्रसिद्ध है, जानते हैं सब, दातिया, ਦਾਤੀਆ ਮਨੇ ਸਵਭਾਵ ਦਾ ਦਾਸ ਕਰੇ, ਗੁਣੋ ਕਾ ਦਾਸ ਕਰੇ, ਗੁਣੋ ਮੇ ਵਿਵਧਾਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇ, ਦਾਤੀਆ ਦਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਤੀਆ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਜਾਈਏ, ਸੰਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਉਦਾ ਪਟਕ ਦੇਖੀਏ ਅਦਾਤੀਆ ਕਰਮੋ ਸੇ। ਚਲੋ ਦਾਤੀਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये कर्म है चार। दातिया दास कर रहे हैं। ज्ञानावरणी किसका दास करता है, ज्ञान का। दर्शनावरणी दर्शन का। मोहनीय श्रद्धा और चारित्र का, श्रद्धा और चारित्र दोनों। क्योंकि मोहनी कर्म के दो अलग अलग पार्ट है, और आचार्य लोग आचार्यों ने नहीं किया कोई बात नहीं तो घातिया कर्म पांच कहे जा सकते थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दर्शन मोह, चारित्र मोह और अंतराय। क्योंकि वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, वो दोनों पार्ट है बहुत बड़े बड़े, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो ये जो बात यहाँ कही, मोह ने क्या काम किया, श्रद्धा और चारित्र का काम। अंतराय ने क्या काम किया, अपनी शक्ति का भाव, शक्ति का घातिया की बात अपेक्षा से देख रहे हैं ना, अभी विस्तृत तो करेंगे चर्चा, अभी इनकी इनकी जो काम है उनको भी हम विस्तार से भी देखेंगे। अभी तो मोटा मोटा हम देख रहे हैं ज्ञान का भाव, दर्शन गुण का भाव, श्रद्धा और चारित्र का भाव और वीर्य का भाव। और घात का अर्थ क्या समझना, घात का अर्थ प्रकट न होने देना, इसका नाम ही घात है। जैसे इससे सबसे बड़ी बात का बात ये है, जब श्रद्धा उनका देखते हैं ना सम्यक दर्शन का, तो फिर हमें लगता है कि सम्यक दर्शन का घात करता है, दर्शन मोहनी सम्यक दर्शन का घात करता है। आपने कह दिया यार मैंने पूछा सम्यक दर्शन था तो जिसको उसने मारा, हाँ कह रहे हो सम्यक दर्शन को मार देता है दर्शन मोहनी। हाँ बात सच्ची है, जब सम्यक दर्शन होगा और दर्शन मोह आ गया तो सम्यक दर्शन को मार देगा दर्शन मोहनी। ये अभी क्या बात कर रहा है, अभी तो खाई नहीं किसको बात है, क्या लगाना प्रकट नहीं होने देता इसे ही घात करना कहते हैं। इस जनागम की बातों को अपेक्षा नहीं समझो ना, ऐसा लगता है यार क्या कह रहे हैं, प्रकट नहीं होने दिया, श्रद्धा प्रकट नहीं होने दी, ज्ञान प्रकट नहीं होने दिया, चारित्र प्रकट नहीं होने दिया, बस की अपेक्षा ने कहा गया कि बात कर रहे हैं, ये बात किया कर रहे हैं। चार नंबर दो, अगर किया कर रीजनी आयु नाम रीजनी कर्म वेदन वेदन फीलिंग डिपेंड करती है वेदनीय कर्म के ऊपर। आयु क्या काम करता है, आयु क्या काम करता है, लाइफ जीने देता है, आयु जीने देता है क्या, आयु मार रहा है, मार रहा है सच में क्या, आयु कर्म जीने देता है ऐसा नहीं कह सकते, दोनों तरह की बातें हैं। जीने देता है ऐसा कहो कि हमने एक बात जो आयु कर्म बांध लिया था ना उसने जीने की गारंटी प्रदान की थी, जो आयु कर्म बना था उसने हमारे को लाइफ की गारंटी प्रदान की, लेकिन डे बाई डे वो आयु कर्म जो उदय में आता जा रहा है वो मार रहा है हमारे को, वो क्षीण कर रहा है, वो खत्म हो रहा है, वो खत्म होते होते मौत को नजदीक ला रहा है। कौन, आयु कर्म। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा लगे दीख आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय कृष्णा
करुण होती जा रही, करुण होती जा रही। समझ में आई क्या कुछ लाइन? अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। आयु कर्ण क्षीण कर रहा है, जवानी क्षीण होती जा रही। प्रत्येक पल जल जाए ये जरा हवा नजदीक आता जा रहा है। काल की भारी घटा प्रत्येक पल मंडरा रही है, लेकिन देखो इसकी दशा। किंतु पल पल विषय प्रश्नाएं करुण होती जा रही। आयु नाम क्या काम कर रहा है? नाम शरीर गोत्र उच्च नीच कुल और ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? शुद्ध आत्मा जो बीच में विराजमान है, ज्ञायत आत्म तत्व, ज्ञायत तो ज्ञायत ही है, वो परिपूर्ण शुद्ध है। उस परिपूर्ण शुद्ध तत्व के ऊपर इन कर्मों ने क्या काम किया? ये चालू कर रहे हैं, ये आकर के हमारे को बांध दिया। कलुषित दिखाई देता है, कैसे दूध पानी की तरह, खीर नीर की तरह है। पर्याय के सम्मुख जाकर के देखें, संसार अवस्था के सम्मुख जाकर के देखने पर ये जीव और कर्म एक दूसरे में दूध पानी की तरह मिले हुए दिखाई देते हैं। एक में है पर्याय दृष्टि से देखने पर, लेकिन यही इसी जगह पर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखो बोलो तो कैसा दिखेगा? किसी जगह पर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखो तो कर्म कुछ कुछ करते नहीं है। कर्म दृष्टि बदली और दृष्टि बदल जाएगी। इस कर्मों की वजह से संसार में रुलता रहा है, ऐसी व्यवहार से बात कहने में आती है। चलिए इन आठ कर्मों के संदर्भ में कुछ एक उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में, एक एक सेंटेंस दिया है, एक एक शब्द दिया है, कुछ एक रूपक बना करके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हम उदाहरणों को देखते हुए इन कर्मों का कैसा फल मिलता है, ये कर्म किस तरह के नौकरण प्रदान करते हैं, उसकी कुछ चर्चा करते हैं आपके बीच में। चलिए नंबर 5 ज्ञानावरण। गोमट कर्म में उदाहरण दिया पर्दे के समान, ठीक है, प्रतिमा रखी है बीच में, उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के पीछे से कुछ प्रतिमा झलकती हुई दिखाई दे रही है। ये ज्ञानावरण कर्म ऐसा पर्दा डाल देता है, ये ज्ञानावरण कर्म ऐसा आवरण डाल देता है। ये ज्ञानावरण कर्म जब सामने आता है तो दिखाई नहीं देता, ये ज्ञानावरण कर्म जब सामने आएगा तो आप देख नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, आपकी समझ को ढक देता है, आपके ज्ञान के ऊपर ऐसा पर्दे की तरह ऐसा 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 ऊपर आवरण आ जाएगा, सामने होती हुई चीज दिखाई नहीं देती है। कौन सा कर्म का उदय? याद की हुई चीज भूल जाता है, एकदम तत्काल दिमाग में नहीं आती है, किसी के पूछने पर उसका जवाब देते नहीं बनता है, बहुत परिचित व्यक्ति के सामने आ जाने पर भी उसको पहचान नहीं पाता है। स्मरण शक्ति चलेगी, याददाश्त शक्ति चलेगी, ये क्या हो गया? कई लोग दिखते हैं ऐसे, याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता हमारे, क्यों हुआ ऐसा? उसके कारणों की चर्चा इस तत्वा सूत्र के आधार पर करूंगा, उसके कारणों की चर्चा। वो विस्तार से अपेक्षा रखता है, पता नहीं कब अवसर आएगा, मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये वाजिया वरना मेरा नौकर दिखता है, मैं क्या करूं? उदय अनुसार जैसा जब निकलना होगा तब निकलेगा, क्या मतलब भाई? लेकिन एक आध दिन में चर्चा तो करेंगे, कल शाम तक कहीं न कहीं इस पॉइंट को अपन छेड़ेंगे, इनके कारणों की चर्चा आगे करेंगे। हो सकता है अभी शाम को ही कर ले, दूसरे प्रवचन में भोजन के बाद वाले प्रवचन में कर ले इसकी चर्चा। लेकिन एक बार कहेंगे तकलीफ को देखो, यदि तकलीफ पकड़ में आएगी तो फिर कारण की बात करेंगे, तकलीफ दिखती हो तो फिर कारण देखो और तकलीफ नहीं दिखती हो तो फिर कारण देखो, मतलब यही। आपको ज्ञान बढ़ने की तकलीफ दिखाई देती है? आपको लगता है
ये क्या हुआ यार, ये क्या हुआ, बोलिए कुछ।
जो
हाँ मंद बुद्धि होना ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय का काम है। बुद्धि चलती नहीं है ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय का काम है। क्यों नहीं चल रही है बुद्धि, समझ में क्यों नहीं आ रही है, इतना समझाने पर भी समझ में क्यों नहीं आ रही है, बार बार समझाने पर भी वो बात बैठ क्यों नहीं रही है। देखो गुरु से ज्ञान नहीं होता, इसके लिए स्पष्ट ज्ञान में आती है ज्ञानावरणी कर्म। गुरु से ज्ञान नहीं होता ये बात हमारे को ज्ञानावरणी कर्म से समझ में आती है, क्योंकि एक गुरु ने बैठ करके कक्षा में 50 विद्यार्थियों को पढ़ाया, सबको एक जगह समझ में नहीं आया। अभी यहाँ सभा में लगे हुए आप लोगों में से सबको अलग अलग समझ में आ रहा है, ठीक है चक्कर है, समझाने वाला तो एक ही बात समझा रहा है, सबको अलग अलग कैसे समझ में आ रहा है, कई लोगों को उल्टा समझ में आता है महेंद्र भाई, कई को सीधा सीधा समझ में आता है और कई लोग सीधे सीधे बात में ही उल्टी बात निकाल लेते हैं। ये क्या हुआ, इन्होंने उल्टा कैसे समझ लिया, इन्होंने गलत कैसे समझ लिया, ऐसा ही ज्ञानावरणी कर्म का। देखो दो बार समझना कह रहे थे, उल्टा समझ लिया, जितनी समझ है वो ज्ञानावरणी कर्म का अयोग्यम है, और जितना समझ नहीं हो पाया है वो ज्ञानावरणी का उदय है। एक ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम, एक ज्ञानावरणी कर्म का उदय है भैया, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम और उदय आपके समझ में आ रही है दिनेश भाई, आ रही है कि जितनी समझ में आ रही है इतना ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम, 100% समझ में आ रही है आप भैया, हाँ 100% समझ में आ रही है, तो इस विषय संबंधी 100% क्षयोक्षम बुलाया इस विषय संबंधी, फिर भी कितना समझ में नहीं आया, क्या समझ लीजिए जो बात निकल गई बैठे बैठे ज्ञान का विषय नहीं बन पाई, उतना ज्ञानावरणी का उदय था। कभी ऐसा नहीं होता है आप कुछ लिखने में ले गए और कोई वाक्य निकल गया है, वो क्यों निकल गया है, उस संबंधी ज्ञानावरणी का उदय था। खतरनाक है ज्ञानावरणी, एक ढक देता है, आप कल्पना नहीं कर सकते, यदि याददाश्त भूल जाए ना ज्ञानावरणी कर्म के उदय में तो क्या स्थिति होगी, कल्पना करके देखो थोड़ा सा। अभी तो कहीं किसी अनजान जगह पर चले जाने पर अकेले हो और मोबाइल में टावर नहीं आ रहा हो तो घबरा है, सिग्नल नहीं मिल रहा, देखो घबराहट हो रही है कि सुन अभी तो मोबाइल का सिग्नल गया है, ये ज्ञानावरणी के उदय में यहाँ पे सिग्नल चला जाएगा तो क्या होगा। यदि यहाँ का सिग्नल चला गया, ये सिग्नल है जो गेट कर रहा है, ये सिग्नल है जो एयरपोर्ट पर आए हम आज के 8-9 साल पहले और अंजाम महेंद्र भाई लेने के लिए आए थे, और ये सिग्नल है जिसने बिल्कुल लिंक किया कि इनके साथ में चल जाओ, ये कैसे किया बताओ। मैं कहता मुकुल भाई हम लोगों का सिग्नल करना बहुत आसान है, कभी किसी भी जगह पर अनजान लोग हमारे को उठा के ले जाते हैं और हम हफ्ते हफ्ते चले जाते हैं उनके सामने बिना कुछ पूछे हुए, वो कहे चलो चलो तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, कितना आसान है, कोई आवाज बिल्कुल अपरिचय, कोई जान पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं, क्या एयरपोर्ट पर लेने के लिए आएंगे, यदि ये लेट हो जाए और इनकी जगह कोई दूसरा आकर के ले जाए हम तो चले जाए उनके सामने, बाद में जाकर के मालूम चलेगा गलत जगह आए, ये कौन उठा रहा है। ये जो कनेक्शन मिला है, ये जो देखते ही पहचानने का काम हुआ है, ये टावर काम कर रहा है यहाँ का मति स्मृति यहाँ का स्मृति स्मृति भंग हो जाएगी, सारा चोट पड़ी, ये ज्ञानावरणी का नौकर है। क्या था नौकर बदलाने थे ना ज्ञानावरणी के, नौकर घूमट साहब ने क्या क्या किए, ज्ञानावरणी कर्म के नौकर बदलाए, दक्षिणावरणी के नौकर बदलाए, बाह्य साधन बदलाए। ज्ञान क्या करेगी, ज्ञानवर्णीकरण क्या करेगा, सोचो थोड़ा गंभीर बात से। ये ज्ञानवर्णीकरण मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊं, इसके लिए क्या करेगा, क्या करेगा ज्ञानवर्णी, क्या कर सकता है ज्ञानवर्णीकरण, क्या उदय में आएगा, ये क्या कर सकता है। सुनो, इसके उदय में ऐसे निमित्त और ऐसे संयोग मिलेंगे जो आपके ज्ञान में आवरण बाधा डालेंगे। वो नौकर मैंने ज्ञानवर्णी किए, ऐसे संयोग मिलेंगे। आप पढ़ना चाह रहे थे, पावर चला गया, लाइट नहीं आ रही, अब क्या करोगे। ये जो लाइट आपकी नहीं पढ़ते समय ये ज्ञानवर्णीकरण का भेजा हुआ नौकर ने जो आपके ज्ञान में आजकल पैदा कर रहा है। आप मोबाइल पर सुनना चाह रहे थे, वाई फाई इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है, लो ये ज्ञानवर्णी का नौकर है। हाँ, आपका ज्ञान ज्ञान में बाधा उत्पन्न हो रही है। आप कुछ किताबें लेकर के स्कूल गए और किसी सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते थे और उसमें वही किताब भूल गए, आप घर पे जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ये ज्ञानवर्णीकरण का नौकर है, ये बाधा उत्पन्न हो रही है। आप जब जब ज्ञान करना चाहें और ज्ञान न कर पाए, जिस वजह से आप पढ़ना चाह रहे थे चश्मे का नंबर उतर गया, ये ज्ञानवर्णीकरण का नौकर है। चश्मा टूट गया, ये ज्ञानवर्णीकरण का नौकर है। आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये ज्ञानवर्णीकरण। और दिमाग का कुछ स्क्रू ढीला हो गया, ये टॉप जोर, ये ज्ञानवर्णी का नौकर है। आप तो हाँ बोली, आप तो रोज ऐसे गिर दिखते हैं, आप अल्जाइमर है और जो भी है, सब सही बात है।
किसी को दवाई दे अच्छा
अच्छी हो जाते हैं। अब देखो डॉक्टर साहब, ये आप जो बात कह रहे हैं ना, ज्ञानवर्णीकरण का क्या रोल है इसमें, उसको ऐसी कोई बीमारी थी, भूल रहा था, ये हो रहा था, जो भी उसके दिमाग संबंधी परेशानियां थी, हमने कुछ दवाई दी उसको, ठीक हो गया, कई ठीक हुए, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कई ठीक हुए, कई नहीं हुए, कौन ठीक हुआ, बिगाड़ा जितने का वो ही सुधारेगा, क्या हम निमित्त बन जाते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं। कल के कल एक उदाहरण दिया था, अरे बड़ी परेशान हो रहे हैं, ड्राइवर से कुछ बात कर रहे हैं, तुरंत आए देखिए ड्राइवर लेके जाओ, हो गया ना, अब किसने किया बताओ, अभी तक ड्राइवर नहीं चल रहा था क्या, और हो सकता है हमारे को पता भी नहीं लगे, अगर ये ऐसा भी हो सकता है नरेंद्र भाई, उसी उदाहरण को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। सेठ जी ने ऊपर से देखा कि पंडित जी को कहीं जाना है, वो ड्राइवर मना कर रहा था जाने के लिए, इतने में सेठ जी ने ऊपर से कॉल किया ड्राइवर को, कुछ बात हुई उससे, अभी नहीं मालूम क्या बात चल रही है, और सेठ जी ने ऊपर से कहा कि मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, तो अपन शाम को चलेंगे, अभी पंडित जी को ले जाओ, ओके बात खत्म हो गई। और उधर पंडित जी कहे जा रहे चलो ना यार, ठीक है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कहा चलो ओके। पंडित जी को क्या लग रहा था, इतनी बार कहा था तो माना नहीं, फिर मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट की, प्लीज कहा, तो फिर चलने को तैयार हो गया, लेकिन चला तो मेरे कहने से। चलो ऐसे ही ये काम जब नहीं होते होते अचानक कोई काम हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है ये काम तो नहीं करने से हुआ है, बट कैसे कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ, वो मरीज ठीक हुआ, ज्ञानवर्णीकरण ने थोड़ी ढील छोड़ दी, वो मरीज ठीक नहीं हुआ, अभी नहीं होना है, अभी होने का योग नहीं है। कोई मरीज तो डॉक्टर साहब एक खुराक में ठीक हो जाता है, और कोई मरीज 10 दिन तक दवाई लेने पर ठीक होता है, और कोई मरीज महीने पर बाद में ठीक होता है, और कोई वर्षों के इलाज तक भी ठीक नहीं होता है। मैं आपसे पूछता हूँ आपके लिए ये डिफरेंस क्यों, बोलो ये अंतर क्यों आया, कर्म, क्या नावर्णी कर्म? आपको बताओ 94 में मेरे मामा को सर में दर्द बहुत होता था, मेरे मामा जी को 94 की घटना कह रहा हूँ, और सर दर्द होता था, सिर्फ सर दर्द। तो दिखाते रहे कुछ ना कुछ, कुछ ऑपरेशन की गई, ऑपरेशन हुआ उनका, और जयपुर का राजस्थान का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन धारकर नाम था उसका, या क्या नाम था ये, तो उसने ऑपरेशन किया 4 महीने के कोमा में पड़े रहे, बोलो आप, और उसके बाद डेथ हो गई उसी समय। जुलाई के आसपास की घटना है और नवंबर में डेथ हुई उनकी, जून जुलाई के आसपास की घटना है, 4 महीने पर कुछ भी नहीं, और कुछ ना कुछ थोड़ा वो नस में कुछ हो गया, कुछ ये हो गया, हजारों ऑपरेशन के डॉक्टर के हाथ से हुए और मरीज सही हुए, ऐसी गारंटी दी जाती थी, बोलो और वो कैसा हो गया 1994 की घटना, हो गया कौन क्या करे बताओ, व्यक्तिगत कर्म का हो जाए डॉक्टर साहब क्या करेंगे, मतलब हम नहीं कर सकते। अंदर जो खुदरा परमाणुओं का परिणाम चल रहा है, बोर्ड अच्छा नहीं है कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने सही तो किया ठीक है, लेकिन खराब किसने किया था क्या लग रहा था? रोजाना आपके पास में ऐसे केस आते हैं और आप सही करते हो, बहुत तो वो सही करते हो, लेकिन उनसे पूछो तो सही, खराब किसने किया था, खराब किसने किया था उसका नसीब है। अब ये नसीब क्या चाहिए, एक ऐसा नसीब पे प्रवचन था मेरा, आज का मुझे यही था सिंगापुर का प्रवचन था, कल जो आपने सुना वो तो नैरोबी का था, एक आर्ट ऑफ लिविंग पर सिंगापुर का प्रवचन है, नहीं वो नैरोबी वाला भैया, एक सिंगापुर का है, अभी रिसेंट किया था 2-3 महीने पहले था, फरवरी में था वहाँ, तो उसमें मैंने ये बात कही, खुश नसीब से बात ख्याल आ गई मेरे को, ऐसा कौन खुश नसीब है नैरो भाई जिसके पास अच्छी संपत्ति है, कौन व्यक्ति को खुश नसीब कहे जिसके पास में ज्यादा पैसा है, किस व्यक्ति को खुश नसीब कहे जिनका परिवार भला है, कहना मानता है, निर्देशन में चलता है, कौन है खुश नसीब? तो मैंने इस बात से कहा, जो अपने नसीब में खुश है वो खुश नसीब है। अपने नसीब में जो मिला है, जो संयोग है, जो वातावरण, जो परिस्थितियां अपने नसीब में बनी है, अपने जगह कर्म की वजह से बनी है, उसमें जो खुश है वो खुश नसीब है। इतने डॉलर होंगे, इतने मिलियन होंगे तो खुश नसीब होगा, कोई गारंटी नहीं है, वो उसमें खुश है ही नहीं है, उस परिस्थिति में, उस संयोग में, उस पर डिपेंड करता है। चलो ज्ञानवर्णी की चर्चा चल रही थी, यहाँ हाँ बोलिए, हाँ आपको पता है, लेकिन फिर भी पूछ लो आप, ठीक है, हाँ इसी तरह का है वो, दवाई के साथ में उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये दवाई और कारगर से ठीक होने की चर्चा तो वेदनीकरण के अंतर्गत आएगी, है ना? अभी तो चर्चा याद होने और भूल जाने संबंधी है, ज्ञान आवरण तो स्टेप बाई स्टेप चल रहे ना अभी अपन, अभी तो चर्चा यहाँ ज्ञानवर्णीकरण के संदर्भ में है। सुनो, किसी का श्रेयोगम बड़ा स्पष्ट गजब का दिखाई देता है, उसके पीछे क्या कारण था, गजब का श्रेयोगम है ये ज्ञानवर्णीकरण का ही श्रेयोगम है, इसकी तो मेमोरी पावर खत्म की है, गजब ही मेमोरी पावर है इसकी तो। अरे ऐसा तो नहीं है, लेकिन होती है बहुतों की ऐसी जिनकी मेमोरी बड़ी बेजती होती है, बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं, वो रह से भी बताऊंगा, लेकिन आपको अगले पीरियड में रहना पड़ेगा उसके लिए, जो रहेंगे वो जान पाएंगे, क्या है उसके पीछे कारण, उस योगक्षण के पीछे कारण, ये ज्ञान का खेल दिखाई देता है। ज्ञान बहुत चमत्कारिक वस्तु है, ज्ञान अद्भुत चमत्कारिक चीज है। जिसके पास में ज्ञान है, मतलब जिसका ज्ञानावरणी कर्ण कट गया है, समझ लीजिए आप बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान उसके पास में हो जाते हैं। सारे ज्ञान के चमत्कार है, और जिसके पास में अकेला ज्ञान नहीं, जिसके पास में तत्व ज्ञान है उसका तो ज्ञान नहीं था। जिसके पास में भेद विज्ञान है समस्याएं आती नहीं है उसके पास। समझ में आ रही है बात, ज्ञान समस्याओं का समाधान कर देता है लेकिन वेद विज्ञानी को समस्याएं दिखती नहीं है। इतना फर्क है, इसके ज्ञान की भी महिमा कम नहीं है, ज्ञान की भी बहुत महिमा है, लेकिन असली महिमा तो वेद विज्ञान की है। निज को निज पर को पर जान, निज मां निज बुद्धि खा तो परिभ्रमण चले। बस जाना कैसे निज को निज, ये जबरदस्त काम है ज्ञानवर्णी का। मैं समझता हूँ बातें समझ में आ गई होगी। देखो और ज्ञानवर्णीकरण का हो जाए, देखो अचानक क्या हुआ, यहाँ बैठे बैठे ज्ञान कहीं और चला गया, वो बात मायूस से देखो भी छूट गई। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, हमने कोई यहाँ प्रसंग सुनाया और प्रसंग सुनाने पर पूरी सभा हंस गई। ये बेटा बेटा सोचा यार क्यों हंसे, तब क्या हुआ, फिर उसकी आंखी से पता लग जाता है कि इसको समझ में तो नहीं आया। ये सबकी आंखी है, आंखी मैंने सुना है, ये दिखाने के लिए हंस रहा है, मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या हुआ, वो बात निकल गई तेरे दिमाग से, वो बात क्यों निकल गई। ज्ञानवर्णी कर सामने रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती है, क्या कारण है। ज्ञानवर्णी कर जो नहीं है वो भी दिखाई दे रही है, क्या कारण है। ज्ञानवर्णी कर क्यों क्यों बहुत तरह के संयोग इस ज्ञानवर्णीकरण की वजह से मिलते हैं। थोड़ी बहुत चर्चा हमने यहाँ कही है, ज्ञान के तो अद्भुत चमत्कार है ही, आपके बीच में कई बार चर्चाएं की है और भविष्य में भी कभी कर सकते हैं। मेरा एक स्पेशल प्रवचन है इस ज्ञान के ऊपर, जिसका नाम है महिमा ज्ञान की। इस नाम से कुछ विशिष्ट प्रवचन होंगे, महिमा ज्ञान की सवा डेढ़ घंटे का प्रवचन होगा, नवाब ने दिया हुआ टेक्स्ट बॉक्स में, ज्ञान की महिमा। हाँ बोलिए। खत्म कैसे किए हैं, खत्म कैसे किए जाएंगे, तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खत्म कैसे किया जाए ज्ञानवर्णी कर्म, ये तो बाद में बताएंगे, पहले ये तो चर्चा करेंगे कि ये बने कैसे। ये जो उमा स्वामी आचार्य है ना, जिनके छठे अध्याय को भेद बना करके अपन ने दो पांच दिन पहले चर्चा शुरू की थी, ये उमा स्वामी आचार्य ने यहाँ छठे अध्याय में कारण बताए हैं। पहले तत्प्रदोष मातरायांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णियो, ये सूत्र है, ये सूत्र नंबर है दस नंबर का सूत्र छठे अध्याय का, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी जो चर्चा कर रहे हैं उसको देखो। ज्ञानावरण ने काम क्या किया, पढ़ने के समान था, ज्ञान को डर दिया, ज्ञान की महिमा की चर्चा फिर कभी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दर्शनावरण। दर्शनावरण दर्शन के आवरण, ये क्या काम है, दर्शन के आवरण देखने नहीं दे रहे, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, तीन मीडिया की कई बार तीन मीडिया पाते हैं आप, ये तो दर्शनावरण करने का काम है। एग्जाम्पल क्या दिख रहा है इसमें, नीचे लिखा है द्वारपाल, द्वारपाल का उदाहरण लेकर के बात की। देखिए ऊपर राजा है, ऊपर वाली स्क्रीन में राजा दिखाई दे रहे हैं, आगे पोर्शन में कहीं वार्तालाप कर रहे हैं, किसी के पास में रहते हुए हैं, और नीचे कोई सज्जन राजा से मिलने के लिए आए और ये रोक दिया गया द्वारपाल के द्वारा, ये कहलाएगा दर्शनावरण कर्म। दर्शन में बाधा उत्पन्न हो गई, मिलने नहीं दिया, अभी अंतराय अलग है, अंदर आई की वादा अलग है, ये मिलने नहीं दिया। क्या मैं गया था डॉक्टर से मिलने के लिए, लेकिन क्या हुआ, मिल नहीं पाया, टाइम हो गया। यदि भी आधे घंटे पहले पहुंचा था, मैं टाइम तो बाद में लगता था, मैं बड़े के लिए पहुंचा, लेकिन जो बाहर खड़े थे ना, उन्होंने रोक दिया कि नहीं, अंदर पेशेंट पहुंचे, आज इतनी पड़ गया, आज आगे नहीं मिलने दिया। ये क्या हुआ, दर्शन हो गए। मतलब मीटिंग की जहाँ बात हो, मीटिंग ना हो पाई, दर्शन के जहाँ आवरण पड़े, और भी बहुत सारी दर्शन वर्णी गर्म की वजह से काम होते हैं, नींद बहुत आना, 9 बजे है दर्शन वर्णी की निद्रा प्रचला क्या याद आ रही है, प्रचला प्रचला कुछ याद आई, नहीं कुछ बोल रहा हूँ मैं आप सुनिए, प्रचला निद्रा प्रचला प्रचला निद्रा निद्रा और श्याम निधि, ये कर्म है, कितने हैं ये कर्म, 5 5 है, 5 प्रकार की निद्रा। नींद की परिस्थिति बनती है बहुत ज्यादा, गहन और नींद की स्थिति बहुत ज्यादा बने, वो इस कर्म का काम है। कौन से कर्म का बदला है, दर्शनावरणी का। उन सबके स्वरूप आप लोगों के ज्ञान में होंगे, ये थोड़ा बहुत ज्ञानावरणी कर्म में आकर दिखाया है एक बार में, मुझे आप लोगों के ज्ञानावरणी कर्म के ऊपर पूरा भरोसा है। उस भरोसे को ध्यान में रखते हुए मैं वापस बता रहा हूँ, प्रचला क्या चीज है, जबकि जबकि नहीं भाई प्रचला क्या है, प्रचला दर्शनावरणी नाम का कर्म, इसमें जबकि आती है। इस दर्शनावरणी कर्म के वालों के उदय वालों के संबंध में मैं क्या कहता हूँ, प्रवचन सभाओं में दिखते हैं, बैठे बैठे आने लग जाती है। इस निद्रा दर्शनावरणी कर्म वालों की स्थिति ऐसी होती है कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि आपको नींद आ रही है, नहीं ज़रा क्या, और वक्ता सामने से बोल रहा है क्या, और बोलते बोलते ये थोड़ा सा झड़क रहा है, और पूछा नींद आई है कि नहीं आई, बताओ क्या कह रहे, सुना भी दे क्या, ये प्रचला का काम है। ये प्रचला वाले कभी कभी सामने वाले को ये प्रदर्शित करने के लिए कि मैं सो नहीं रहा हूँ क्या, वो कुछ उंगलियां हिलाते रहते हैं, वो ये कोशिश ये दिखा रहे हैं कि मैं जल रहा हूँ क्या, लेकिन वो प्रचला में जल रही है, मैं सोच रहा हूँ तो प्रचला में जल रहे हैं। दूसरा दर्शनावरणी कर्म है निद्रा, जिसमें सामान्य नींद की परिस्थिति बनती है, निद्रा हो गई। फिर 3 नंबर पर है प्रचला प्रचला, इस प्रचला प्रचला के काल में ऐसी स्थिति होती है जब हाथ पांव पछाड़ने लगता है, कुछ होश नहीं रहता है, इसको नींदों में ही हाथ पांव पछाड़ता है, हाथ पैर पटकता है, करवट बदलता है, मुंह से लार बहने लग जाती है क्या। छोटे बच्चे जैसे इस प्रचला प्रचला निद्रा के काल में कुसू कर लेते हैं, पता नहीं लगता है, वो मालूम नहीं चल पाया, होश ही नहीं था, लार नींदों में बड़बड़ाने लगता है कभी कभी। कौन सी निद्रा है, प्रचला प्रचला, किसी को आती है यहाँ, हमें क्या पता, पंडित जी पार्टनर बताए क्योंकि जो प्रचला प्रचला में होता है वो कुछ बड़बड़ा रहा है, बगल वाला इलाका में कुछ पूछे कि क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहा, ऐसा होता है कभी। 3 हो गए, 4 निद्रा निद्रा खतरनाक निद्रा है, नींद के नींद नींद के नींद, इसका उदय आता है जैसे के काल में, जब जैसे होता है तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर वो सोन ठीक क्या हो रहा है। इंडिया से अमेरिका आए यहाँ, यहाँ अमेरिका आने के बाद जैसे पहले दिन आए, अब जो हालत है नींद की वो लगती है निद्रा निद्रा। मैं जगना चाह रहा हूँ और नींद आ रही है, मैं जगना चाह रहा हूँ और नींद आ रही है। मैंने भाई मैंने इस निद्रा निद्रा के काल में बहुत प्रवचन किए हैं। हाँ मजाक नहीं कर रहा, सच में निद्रा निद्रा के काल में। अब आप सभा में तो नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस पर आपने प्रवचन किए मैंने न्यूजर्सी में 2014 में 16 कारण भावनाओं के प्रवचन लेता था मोना वालों के लिए, 4 बजे का सेशन होता था 4 से 5 क्या, और वो प्रवचन चलता रहता था और मैं ऐसी नींद में क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं। फिर बाद में मुझे रिकॉर्ड होता था, आज भी वो सारे वीडियो रिकॉर्ड है मेरे लैपटॉप में, उनको देखता हूँ तो मैं हंसता हूँ भी। एक ऐसे नींदों में बोल रहा है, गलत कुछ नहीं बोला लेकिन क्या मैं वो इतना निद्रा का प्रकोप रहता है, इतना ज्यादा प्रकोप रहता है कि आप जागरूक रहने की कितनी भी कोशिश करो वो नींद जो है नींद के लिए उठाने से भी ना उठे। कभी कभी बच्चों का ऐसा एग्जाम्पल देते हैं हम कि बच्चे कहकर के सोते हैं कि तुम्हें जल्दी उठा देना एग्जाम का टाइम पड़ेगी, और जब उसके वही में 7 बजे होते हैं और बहुत नाराज होते हैं, आपने उठाया क्यों नहीं मेरे को, ये बेटा उठाया तो बहुत सा उठा नहीं, उठ करके सो गया। ये निद्रा निद्रा की स्थिति ऐसी होती है, अलार्म लगा करके सोता है और अलार्म बजता है और उसको दबा के वापस हो जाता है, ऐसी स्थिति होती है। अत्यधिक मकान के काल में ऐसी स्थिति होती है, फोन बजता रहे पता नहीं लगे, ऐसी स्थिति होती है। ऐसा भी हुआ एक बार मेरे पास किधर जी ने, रात को बहुत लेट हुए, सुबह वंदना के लिए जल्दी उठना था, जिसको ताज में जाना था, जब मैं उठा तो उठने के बाद में देखा तो उनके 10-12 मिस कॉल थे, फोन 10 बजे कुछ होश नहीं और समय निकल गया, चढ़ नहीं पाए बाढ़ को समय तो बाद में चढ़े, लेकिन दूसरे से वो समय निकल गया, 3:30 क्या 4 बजे के आसपास का पूछा था, 6 बजे क्या उसको, 1:30 बजे पूरी तैयारी करके हुए, पूरी प्लानिंग करके हुए। हमारे विवेक शास्त्री है इंदौर, वो थे 2016 की बात है हमारे, साल के बाद में चलेंगे पक्का, अच्छा रहेंगे पूरे व्यवस्थाएं थी गाड़ी पढ़ी जयंती का आयोजन था हमारे टोटल स्मारक का, तो बहुत सघन सारे कार्यक्रम में जनता विधान लिए, वो कार्यक्रम प्रवचन बहुत रात को बहुत लेट हुए, हेडगेड लिया पूरी तैयारी के साथ की, पहन करके जाना है, लेकर के जाना है, चावल ले जाने हैं, लकड़ी है, एक और से सब सब बिल्कुल 4 बजे उठ करके चलेंगे चलना है, और उससे कह दिया बात नहीं चलेंगे, वो भी जरा फोन करता रहा बहुत, और उसे लगा ऐसा बाद में मिले तो उसे लगा कि मुझे ये लगा कि आप चले गए इंटरनेशनल लेट हो गया था, क्योंकि आप टाइम की बहुत पंचर हो, हम जब पढ़ते थे तो कभी ऐसा नहीं देखा कि आप टाइम, मतलब आप इतने किलोमीटर दूर से आ जाते थे राइट टाइम पर और हम ऊपर से करके नहीं आ पाते थे, इसलिए मुझे लगा कि अगर टाइम हो गया तो आप निकल नहीं गए, इसलिए मैं बोलो ये कौन सी निद्रा 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 अंतिम श्याम वृद्धि, श्याम वृद्धि ये कैसे निद्रा है, श्याम वृद्धि ये तो नींद में चलने लगता है, मैंने तो नींद में प्रवचन नहीं किया क्या, फिर चलने लगे नींदों में चलने लगे और पता नहीं लगे, और जो वापस आकर के सो जाए दोबारा और सुबह उठे और किसी ने कहा रात को कहां गए थे, कहीं नहीं, बीमारी समझी जाती है। मैं जानता हूँ ऐसे 2 लोग मेरी दृष्टि में है वर्तमान में, उनके चेहरे मेरे ध्यान में है, खून करके आता है, चोरी करके आता है, कोई गलत काम करके आता है, रेंज रूट करके आ जावे पता नहीं उसको, कहीं एक्सीडेंट करके आ जावे पता नहीं, वो दूसरा उसको रिकॉर्डिंग दिखाए तो पता नहीं उसको। 2 चेहरे मेरी निगाह में है महेंद्र भाई ऐसे जिनको नींदों में चलने की आदत थी, वो रूम से निकल करके चलने लगते थे, रूम से निकल करके चलते थे, उनकी जो क्लासमेट जो दोस्त थे रूममेट जो थे वो एक दो बार तो लगा कि यार कहाँ जा रहा है, देखा कि इसको चलने की आदत है, फिर से एक दो बार उन्होंने ऐसा किया कि मुझे जा रहा था उसको वहां से घुमा दिया वापस कमरे में आ गया। उसके बाद में वो अंदर रूम में जब सोते थे तो ताला लगा करके सोते थे, जाने के बाद तो कहीं चला जाए नहीं जाने चलो। आपके बड़े भाई नींदों में नींद में ताला खोल के चले जाते थे हम लोग। अब बोलो आप हाँ बोलो दस बारह साल का भाई कुछ ये जो बीमारी है ये किसका काम है भाई साहब, ये किसकी वजह का काम है मतलब क्या आप चाहते हैं कि आप इस तरह से बीमार पड़ जाए? क्या आपको लगता है कि अगर घटना बड़ी कर्म का हमारे लिए आ जाए? क्या आपको अच्छा एक घटना और घटी ऐसी मेरे साथ में किसी की घटना याद आ रही है? देखो अभी यहीं से ज्यादा पड़ गए 2000 डिग्री की बात है, यहाँ पे फ्लाइट मेरे को पकड़नी थी फ्रैंकफर्ट से, हाँ अनुसंधान भी गए थे यहीं से गए थे ना, यहाँ से गए फ्रैंकफर्ट में 4-5 घंटे का गेट था, मैं और भाई साथ में थे यहीं से गए थे महेंद्र भाई, तो 5 घंटे का गेट था। अब आराम से बैठे थे सारा सामान खोल करके जाएंगे जिस जगह पर जिस गेट से जाना था उस गेट पर हम पहुंच गए थे, और कोई दिक्कत नहीं थी गेट पे पहुंचे यहाँ पे जाएंगे बैठे आराम से बातें कर रहे थे। तो चाय बनाई उसमें कुछ ऐसा किया पानी वानी पिया नाश्ता था सुबह नाश्ता वगैरह खाया बैठे थे, अचानक पता नहीं कब नींद आ गई बैठे बैठे, और ऐसी नींद आई मुकुल भाई कि हमारे नाम के बहुत अनाउंसमेंट हो गए हैं क्या, और हम सोते रहे बहुत अनाउंसमेंट होते रहे, और फिर अचानक क्या हुआ कि जो दक्षिणावर्णीकरण का जो उदय चल रहा था अचानक ये बदला और मेरी आंख खुली और आंख खुलते ही मैंने घड़ी देखी और माइक का अपना नाम सुना, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, उसको उठाया पावन को समेटा और जिस गेट पर जाना था उस गेट पर गए तो उस गेट पर मेरा गेट बदल गया था क्या उसे क्या? लेकिन वो क्या हुआ ये तक समझ में नहीं आया, इतना टाइम कैसे निकल गया कि यहाँ के टाइम और वहाँ के टाइम का जो डिफरेंस था वो जो जेट लैग था 2-4 घंटे का जो डिफरेंस उसने ऐसा घुमा दिया जाकर दिमाग क्या, उसके बाद में तो सोच लिया कभी दूसरी जगह से फ्लाइट पकड़नी हो तो कुछ भी हो जाए दो तीन दिन अलार्म लगा करके सोना, उस अलार्म भी नहीं लगाया सोने का विकल्प भी नहीं कर सकी, अब कहते हैं थके हुए हैं तो आग बंद कर ली, अब आग बंद कर ली और कम 2-4 घंटे निकल गई है, ऐसा हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कभी फ्लाइट मिस हो जाए? बोलो यदि नहीं चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? दक्षिणावर्णी से बचना पड़ेगा, दक्षिणावर्ण से बचो, दो कर्म हो गए ज्ञानावरण और दक्षिणावरण पड़ेगा, ऐसा तो खत्म ही हो गया, बोलते तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं की अंधे व्यक्ति को, हाँ चक्षु दक्षिणावरण कर्म का उदय भी है सब संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, दो कर्मों की चर्चा की जा चुकी है ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म, ठीक है तीसरे कर्म की चर्चा करते हैं, तीसरे कर्म का नाम मोहनी। क्या ये मोहनी क्या काम कर रहा है? देखो आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, शराबी गहन का काम करता है। शास्त्रों में उदाहरण नहीं है, शास्त्रों में गोमटकार कर्म का उदाहरण है मोहनी कर्म के लिए, ये मोहनी कर्म शराबी की तरह होश नहीं आने दे रहे जब इस कर्म का उदय आता है, जब दर्शन मोहनी कर्म का तीव्र उदय होता है तो अपने पढ़ाई की पहचान नहीं होती, निज में निर्वृत्ति नहीं आ पाती, जब ये दर्शनावरणी कर्म दर्शनावरणी दर्शन मोहनी कर्म अपने प्रचुर मात्रा में होता है प्रबल उदय आता है, ये दर्शन मोहिनी को कम मत समझना, बहुत खतरनाक है ये दर्शन मोहिनी। जब तक दर्शन मोहिनी है तब तक हमें दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जब तक दर्शन मोहिनी करने है। जिस जगह दर्शन मोहिनी है मौजूद है वहां परमे सुख बुद्धि दिखाई देती है। जहां दर्शन मोहिनी कर्म के कार्य बता रहा हूँ आपको, दर्शन मोहिनी कर्म के होने में क्या क्या परिस्थितियां बनती है। एक जवाब तो ये हो गया कि मदहोश है, एक बात हो गई। अब इस मदहोशी को थोड़ा सा डेलीगेट करें अपन, ये मदहोश कैसे होता है, किस तरह का मदहोश है। तो बोले ये अपना नाम भूल गया। ये क्या बात कर रहे हो साहब, अभी ये नाम भूलने वाली चर्चा तो आपने ज्ञानावरणी के संदर्भ में की थी कि सुनो उस ज्ञानावरणी कर्म के उदय में तो देह का नाम भूला था। इस दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में अपना असली नाम भूल गया। क्या मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा है मेरा नाम, ये दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में याद नहीं आता। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ये मेरे ज्ञान नहीं होता। इस दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में तीव्र उदय में और पदार्थों में एक सुख दिखाई देता है, इसे लगता है इसमें सुख है, इसमें आनंद है, क्या आनंद आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। देखो जैसे शराब को कुछ विवेक नहीं रहता है ना, शराब पीता है कभी जुआ खेलता है, कहीं पड़ जाए, कहीं रोड पर गिर जाए, कहीं नशे में कहीं लहराता हुआ चलता है। टोडामंजी ने एग्जाम्पल दिया था शराबी व्यक्ति शराब के नशे में पत्नी को पत्नी और माता को माता भी कहे, कभी माता को पत्नी कहता है, पत्नी को माता कहता है शराब के नशे में। ये इनका उदाहरण है। सत्वा सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने पहले अध्याय का 32 नंबर सूत्र दिया, 32 नंबर सूत्र। उन 32 नंबर के सूत्र में उन्होंने कहा सब सकोर विचे का ये सूत्र है, आपके पास है कि 32 नंबर का सूत्र है पंच व्याकरण का, सब सकोर विचे का वृक्षोप लब्धे उन्मत्तवत् उन्मत्तवत् नशे में। इसकी टीका करते हुए पूज्य माता कह रहे माता और पत्नी का उदाहरण दिया, शराबी का उदाहरण दिया, उन्मत्तवत् सब सकोर कुछ होश नहीं है, कौन अपना है कौन पराया है क्या है, ये कुछ होश नहीं रहता है। कैसी बात कर रहे, कुछ होश नहीं रहता है कि हाँ अच्छा कोई बात नहीं, जब वो सही बात कहे तब तो सही मान लेना ना, क्या तो सही कह रहा है। सुनो यदि वो शराबी व्यक्ति सही भी बात कहे तो भी वो सयाना नहीं हो जाता। इसी तरह से दर्शन मोहिनी कर्म के तीव्र उदय वाला व्यक्ति कदाचित जवान से ये कहे कि नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूँ मैं तो आत्मा ही हूँ, तो भी वो ज्ञानी नहीं हो गया, तो भी वो सम्यक दृष्टि नहीं हो गया। वो जो बोल रहा है कि आपके नशे में बोल रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ रोड पर चलता हुआ कोई व्यक्ति, आप आज कर रहे थे रोड पर गाड़ी लेकर के हाईवे पर निकल गए, रोड जंगल में से होकर के गुजर रही थी, आगे पीछे कोई था नहीं और बीच जंगल में आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप क्या करोगे। अब गाड़ी खराब हो गई अब रास्ता बताने वाला या फिर रास्ता भटक गए ऐसा समझो, उदाहरण तो अपनी कहते ही होते हैं तो आप बिल्कुल भी घुमा सकते हो, रास्ता भटक गए मान लो, अब रास्ता चल रहे हैं पानी लग रहा है किधर चल रहे हैं यार, सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्या करें। इतने में एक व्यक्ति दिखाई दिया, वो व्यक्ति दिखाई दिया हमारे चेहरे की थोड़ी प्रबलता भी गाड़ी पीछे जाई रही थी, बहुत दूर दिख रहा था यार वो आदमी चल रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे नजदीक आते रहे हमें दिखाई दिया कि ये आदमी थोड़ा लड़खड़ा करके चल रहा है, थोड़ा सा लहरा रहा है और एक हाथ में बॉटल है। बोलो उससे आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो सही। लेकिन जो जवाब मिलेगा क्या उस जवाब के नियम से भरोसा नहीं कर सकते, उसने हमारे बोला हुआ इस तरह की भाषा में उसने जवाब दिया। अब बताओ अब आप मान ਅਸੀਂ ਦੌੜਾਂਗੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਰਫਤਾਰ ਪਰ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਧਰ ਬਤਾਇਆ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਸਤਾ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਬ ਤੋ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਉਸਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰੇਗੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਪਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਹਾ ਹੈ ये ऐसे ही बोलता है घर में सुख नहीं है ये शास्त्र के आधार से बोलता है दंड मोहनी का उदय नहीं है शास्त्र ही अनुसार वाकई बना है ये कहता है घर में सुख नहीं है ऋषियों में सुख नहीं है धन में सुख नहीं है बोलो अभी मैं यहाँ बैठे हुए तमाम में लोगों से पूछूं हाथ खड़े करो कौन कौन ऐसा कहता है कि डॉलर में सुख है इधर से लेकर के इधर तक किसी के हाथ खड़े नहीं है किसी के खड़े नहीं सब हमने इकट्ठी हो गए सब हमने इकट्ठी हो गए क्यों नहीं हुए सबने इकट्ठी आप हंसे क्यों मैं तो हमने इकट्ठी समझ रहा था आपको लेकिन आपकी हंसी ने सारी बात को स्पष्ट कह दिया कि पंडित जी क्या बताए कह कहेंगे तो हमने यही कि डॉलर में सुख नहीं है लेकिन जब नुकसान होता है ना तो तकलीफ बहुत होती है जब वो बढ़ते हैं ना वैसे हम जानते हैं कि सुख नहीं है लेकिन जब बढ़ते हैं तो पता नहीं क्या होता है अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग होती है कि मोहनी का काम है कि जागृत नहीं होने देता बेहोश पड़े रहने देता है कि मोहनी का काम है शराबी का एक काम लेकर के बाकी एक और ले लेते हैं अंतराय है ना कारणों की चर्चा नहीं करेंगे अगले सेशन में चर्चा करेंगे मुझे लगता है कारणों की चर्चा कल ही होगी हाँ चारित्र मोहनी अजी देखो आप चारित्र मोहनी के हृदय में तीव्र घटाएं गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है और से गुस्सा करता हुआ दिखाई दे रहा है सुनो खुद गुस्सा करो तत्व तत्व ज्ञान के अभ्यास से उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करना लेकिन किसी दूसरे को गुस्सा आ रहा हो तो आप यह सोच करके विचार करना कि बेचारे का कंट्रोल नहीं है इसके चार मोहनी का उदय चल रहा है समझ में आ रही ये फॉर्मूले है सामने वाले के गुस्से के साथ आपको लड़ने को तैयार हो जाओ उससे बचने का फॉर्मूला क्या है सामने वाला जो गुस्सा करता हुआ दिखाई दे रहा है इसका कसूर है क्या कुछ गुस्सा कर रहा है ये कसूर नहीं है चार मोह का उदय है ये क्या करें चारित्र मोहनी की क्रोध नामक करण प्रकृति के उदय में गुस्सा आता है चारित्र मोहनी की मान नामक करण प्रकृति के उदय में घमंड होता हुआ दिखाई देता है चारित्र मोहनी की मायाचार प्रकृति में छलकपट करने का परिस्थिति बनती है और लोभ नामक करण प्रकृति के उदय में ये संग्रह की शक्ति बनती है कैसे परिणाम होते उदय है इनका चारित्र मोहनी का चलो अंतर आए और दो चार मिनट बात करें अपन थोड़ी अंतराय कर्म के संदर्भ में क्या है के लिए नहीं कह रहा हूँ क्या क्योंकि ये कर्म तेरा कुछ बिगाड़ते भी नहीं वो पॉइंट लास्ट पॉइंट करेंगे उसकी चर्चा करेंगे लास्ट में कि तू कर्म से डरना मत लेकिन अभी तेरे डरेगा ही नहीं तो फिर डरना मत बात कहने से क्या मतलब है पहले डराए फिर डरा करके कहेंगे कि तू डरना मत अभी तो हालत ये है कि सामने वाला पहले ही नहीं कर रहा है सामने बैठे हुए लोग कहते हैं हमें कोई कर्म की परवाह नहीं है तो कहते हैं भैया तू दे दिए कर्म का फल मिलेगा तो क्या होगा करना पड़ेगा ये अंतराय कर्म जो तेरा बांधा हुआ था ये अंतराय कर्म जो उदय में आएगा तब क्या परिस्थिति बनेगी इस अंतराय कर्म का जब फल मिलेगा तब क्या परिस्थिति बनेगी होता हुआ काम अटक जाएगा होता हुआ काम अटक जाएगा जिसके बारे में तुझे लग रहा था ये काम को होने वाला है वो काम अटक गया ये क्या हुआ किसने अटकाया बदलाव इस अंतराय कर्म के नौकर्म क्या है ये उदाहरण दिया है यहाँ एक व्यक्ति मांगने के लिए आया देखो राइट साइड में जो व्यक्ति खड़ा है ना ये कुछ मांगने के लिए आया है बीच में सीट पर राजा बैठे हुए हैं और लेफ्ट साइड में खजांची खड़ा हुआ है कैशियर है, अकाउंटेंट है, हिसाब किताब देखने वाला है, खजाने को संभालने वाला है, वो क्या कहता है राजा से, महाराज कितने में निपट जाएगा, रहने दो मत दो, रो जाते मांगने वाले ऐसे बात हड़ाऊंगी, काम नहीं हो सका। ये नौकर ने आपका भूता हुआ काम यदि किसी के माध्यम से अटका दिया गया है, जिसके माध्यम से अटकाया गया है इंद्र भाई, वो मेरे अंतरायकरण का नौकर ने है, वो व्यक्ति, इस व्यक्ति ने मेरा काम अटका दिया, इस व्यक्ति की वजह से मेरा काम अटक गया। सुनो, इस व्यक्ति के ऊपर इल्जाम मत दो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं दो इस व्यक्ति के ऊपर इल्जाम, बिल्कुल मत दो। सुनो, इसको किसी ने भेजा है, किसने भेजा है इसको, हमारे अंतराय नामक कर्म के उदय ने इसको काम अटकाने के लिए भेजा है। हमारे अंतराय कर्म जो होते हैं, कई काम कैसे होते हैं, अटकते हैं, सरकारी काम होते नहीं आसानी, पाई अटक गई, आगे नहीं बढ़ रही है, काम नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत तरह की बातें होती है। जब बहुत इस तरह की बातें हो और काम अटकते हुए दिखाई दे रहे हो, हमारे पास भी आए, बात कही, हमारी समस्या थी, हम गए महेंद्र भाई के पास में, उन्होंने कहा पंडित जी आप तो काम पर करवा दो, अपने तो बात की बात है, ये अटका रहे बंदा, इसको हटा देंगे, नया आया है कहीं है, कहीं इनके पास में ट्रांसफर ऑर्डर भिजवा देता हूँ, आपकी भाई अच्छा रखी है, इसे करवा दे। हाँ हाँ करवा दो, सुनो इसको करवा दिया, अब जो नया आया है ना उसका भी भाव का, अब क्या करें बोलो। अरे वो व्यक्ति गलत नहीं है, वो क्या करे, आपको लग रहा है कि इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है, असली कारण अंतराय का हो गया, मेरा अंतराय कर्म का हो गया, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है, काम अंतराय के होने की वजह से नहीं हुआ, वो हमने नहीं समझा और सामने वाले को इल्जाम देते रहे। अरे अंतराय कर्म की वजह से स्वरूप को गहराई से समझने के बाद दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बुद्धि निकल जाती है, किसके ऊपर दोषारोपण करें, किसको दोष देने बदलाव। और सुनो, जो व्यक्ति काम अटका रहा था, अटकाने की सोच रहा था, निरंतर बाधाएं डालने का विचार कर रहा था, मेरे अंतराय कर्म का उदय कर गया, वो लाख कोशिश करता रहे मेरे काम को अटका नहीं पाएगा। बोलो समझ में आ रही है बात, मैं बहुत कोशिश करी, मेरे काम अटक जाए, मेरे काम में अड़चन आ जाए, आपको फील होता होगा कभी कभी ऐसा, कई पार्टी ऐसी होती होंगी क्या, कई पार्टी ऐसी होती होंगी जो आपके काम को अटकाती होंगी आपके बिजनेस में, और जब आपका काम हो जाता होगा तो आप फील करते होंगे उसमें बहुत काम लड़ाई थी, लेकिन अपन ने कर लिया काम, कितनी बार फील करते हैं आपका प्रमोशन हो रहा था और कोई ऐसी ऐसा नहीं बार बार में काम लड़ा रहा था, काम को लगा फिर यार ये काम अटकाएगा, ये काम अटका सकता है, ये काम बहुत, ये बहुत खराब व्यक्ति है, क्या करूँ मैं, और जब ले आई प्रमोशन की हमारा प्रमोशन हो गया, इसका मतलब आपका अंतराय कर्म का क्षयोक्षम था विशेष, अंतराय कर्म बाधा नहीं डाल पाया क्योंकि उदय नहीं था, और यदि अंतराय का उदय आ जाए तो तुम लाभ तैयार कर लो, किसी भी एक्रोच लगवाओ ऊपर से, काम नहीं होना तो नहीं होगा, फायदा ये कर्म के उदय हमारे को निश्चिंत करते हैं, ये कर्म के उदय हमारे को निर्विकल्प करते हैं, दान देने में बाधा उत्पन्न, लाभ में बाधा उत्पन्न, भोग में बाधा उत्पन्न, उपभोग में बाधा उत्पन्न, आपकी शक्ति और आपकी पावर में बाधा उत्पन्न हो गई, आप कर्म खाने के लिए बैठे और खा नहीं पाया, पर आपको उठकर के जाना पड़ा, भोग अंतराय कर्म का उदय, आप उपभोग करने के लिए बैठे और उपभोग कर नहीं पाए, उपभोग अंतराय कर्म का उदय, आप देना चाहते थे और सामने वाले ने देने से मना कर दिया, आपके दान अंतराय कर्म का उदय, आप दान देने के लिए यहाँ से लेकर के गए क्या और आप नहीं पा भूल गए, वापस बैठ करके आ गए, दान अंतराय कर्म का उदय, आप सोच करके गए 1,00,000 रुपया लेकर के आऊंगा लेकर नहीं आऊंगा, और साथ में लेकर के गए यहाँ से क्या बना करके गए थे, और पता है जब वहां से निकले और ट्रेन में फ्लाइट में बैठे तो यहाँ से कुल किस गिर गए, हर कुछ नहीं हो सकता, वापस आने लगते अंतराय कर्म का उदय, आप यदि ये चाहते हैं कि अंतराय कर्म की वजह हमारी लाइफ में बाधा उत्पन्न ना करें, तो आपको विचार करना पड़ेगा कि आप ही ये कर्म बंधते किस कारण से है, ये विचार करना पड़ेगा। उससे बचेंगे, बंधराय से बच पाएंगे। ये कुछ कर्मों के संदर्भ में आपने चर्चा की है, लेकिन फिर अंतिम बात ये कहकर यही बात को पूरी करता हूँ मैं, विस्तार से चर्चा फिर करूंगा। अंतराय कर्म का उदय कितना भी आ जाए और काम कितने भी अटकते हुए दिखाई दे, ये अंतराय कर्म जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। परिस्थितियों में ही तो आएगा, अड़चन जो डाली है, आगे कर्म के उदय में नौकर भी तो मिलेंगे, द्रव्य कर्म के उदय में तो नौकर मिलते हैं महेंद्र भाई, दुखी दुखी नहीं, दुख दुख नहीं होता। इस कर्म के उदय में नौकर मिले, लेकिन उस प्रतिकूल नौकर के मिलने पर दुखी होना ये नहीं होना, ये कर्म के हाथ में नहीं है, ये मेरे पुरुषार्थ के हाथ में है। इसलिए अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करें, इसी भावना से बात को यही देना।
Your conference recording has stopped.
Thank you.